ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया। कहा, लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार जल्द ही जीएसटी में एक बार की माफी योजना लागू करेगी। दिल्ली सरकार ने आज राजधानी में दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर सेवा देवी सेवा के तहत 400 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 में दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा वेब्स को बताया कंटेंट क्रिएटर्स का महाकुंभ। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज तेज वर्षा और आंधी से कई दिनों से चल रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन बारिश के कारण जलभराव, पेड़ उखड़ने और यातायात में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं द्वारका क्षेत्र के खरखड़ी नहर गांव में खेत में बने ट्यूबवेल के कमरे पर पेड़ गिरने से एक महिला और उसके तीन बच्चों की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार को हर आवश्यक सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसद से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। दिल्ली में आज तड़के सुबह हुई तेज बारिश के बाद राजधानी के कुछ इलाकों में जलभराव की सूचना मिलते ही सरकार के सभी संबंधित विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया। स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजनू का टीला समेत दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में हुई बारिश के बाद जिन क्षेत्रों में जलभराव की समस्या सामने आई है, उन्हें हमारी सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रीगण और अधिकारी सवेरे 6 बजे से ही फील्ड पर जाकर जल निकासी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं।
निश्चित रूप में वो अपने एरिया में जल निकासी का काम करवा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी जल भराव वाले क्षेत्र के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि नालों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और जल निकासी में लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आज की बारिश सभी संबंधित विभागों के लिए चेतावनी है कि नालों की सफाई से लेकर सड़कों की मरम्मत तक यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो मानसून में हालात और खराब हो सकते हैं। दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि दिल्ली में हुई तेज बारिश की वजह से आम जनता को आ रही समस्याओं को निपटाने के लिए एनडीएमसी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से राजधानी में 500 से ज्यादा स्थानों पर लगाए गए कैमरों की निगरानी होती है। उन्होंने कहा कि इन कैमरों की मदद से हम ये देख पाते हैं कि किन किन स्थानों पर जलभराव और साफ सफाई जैसी समस्याएं हैं और उसका समाधान कैसे त्वरित किया जा सके। श्री चहल ने बताया कि राजधानी की एलईडी लाइट्स को भी यहां से नियंत्रित किया जाता है। राजधानी में आज तड़के सुबह हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 10.2 डिग्री कम 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री कम 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार जल्द ही जीएसटी में एक बार की माफी योजना लागू करेगी, जिससे व्यापारियों को पुरानी बकाया राशि की समस्याओं से राहत मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री आज राजधानी में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट द्वारा आयोजित व्यापारिक नेताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापारी करों से बचना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि वे व्यापारी एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां उनसे कर आसानी से वसूला जा सके।
ट्रेड के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिल्कुल हैजल फ्री लाइसेंसिंग पॉलिसी, उसको जो लाने की आवश्यकता है उस पर भी सरकार काम कर रही है। जितने विषय हैं, जैसे वेयर हाउस पॉलिसी कोई दिल्ली में है ही नहीं, तो एक अच्छी वेयर हाउस पॉलिसी लेकर के आए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही राजधानी के लिए वेयरहाउस नीति और औद्योगिक नीति का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इन नीतियों के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा तथा उद्यमशीलता को और प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए व्यापार और उद्योग संबंधी अवसर विकसित किए जाएंगे, जिससे दिल्ली में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि दर में भी इजाफा होगा। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के हितों की रक्षा और विकास के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन किए जाने की घोषणा भी की, जिससे व्यापारिक समुदाय को सरकारी नीतियों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। दिल्ली सरकार ने आज राजधानी में दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर सेवा देवी सेवा के तहत 400 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देवी बस सेवा का उद्देश्य बस टर्मिनलों और मेट्रो स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम करने में सहायता करना है।
इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली सरकार की इस पहल की सराहना की। श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुसार दिल्ली में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी।
400 इलेक्ट्रिक बस की शुभारंभ हो पा रही है। आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने अनेकों कल्याणकारी काम किया है। दिल्ली की स्वास्थ्य, दिल्ली की पढ़ाई, दिल्ली की परिवहन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक 2000 से अधिक देवी बस उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि बसें विशेष रूप से दिल्ली की छोटी सकरी सड़कों के लिए डिजाइन की गई हैं, जहां बड़ी बसें नहीं जा सकती।
दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर बसेज, 400 बसेज आज हम दिल्ली की सड़कों पर लेकर के आ रहे हैं। हमारी अपनी सरकार ने आज 400 बसें दिल्ली को समर्पित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा है और इसके बाद भी इस साल के अंत तक हम 2080 बसें और इलेक्ट्रिक खरीद के दिल्ली की जनता को समर्पित करने वाले हैं।
यह पहल हरित परिवहन की दिशा में एक नए युग की शुरुआत है। इस योजना के तहत 1456 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी, जो आराम, सुविधा और पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने कल दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के अंतिम खंड पर नमो भारत ट्रेन की परीक्षण यात्रा आरंभ की, जो इस खंड के अंतिम स्टेशन मोदीपुरम तक पहुंचेगी। परीक्षण यात्रा में शताब्दी नगर और मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन संचालित की गई। पहली बार नमो भारत ट्रेन ने मेरठ के भूमिगत खंड को पार किया। शहर के केंद्रीय क्षेत्रों को हाई स्पीड रेल द्वारा दिल्ली से जोड़ने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी परीक्षण संचालित खंड के न्यू अशोक नगर और सराय काले खां और दूसरे छोर पर मेरठ साउथ और शताब्दी नगर के बीच दो खंडों तक सीमित था। NCRTC ने न्यू अशोक नगर से सराय काले खां और मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच पटरी बिछाने, विद्युतीकरण और सिग्नल प्रणाली सहित अन्य सिविल कार्य पूरे कर लिए हैं। दिल्ली विधानसभा ने अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के आदेश पर स्पीकर गैलरी और प्रेस गैलरी को घेरने वाले कांच के पैनल हटा दिए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री गुप्ता ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और ये लोकतांत्रिक जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मीडिया की आजादी जो हमारे लोकतंत्र की हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है उस पर जिस तरह से रोक लगाई हुई थी ये बड़ी हैरानी की बात है। देश की अकेली असेंबली ऐसी थी दिल्ली की जब सदन चलता था लेकिन पत्रकार नहीं होते और उसका कारण था कि यहाँ पर शीशों की दीवार खड़ी की गई जिसके कारण सदन का अवलोकन अवरुद्ध हुआ और मीडिया के लिए भी ऐसी स्थिति में बैठ पाना संभव नहीं होता था।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल मुंबई में आयोजित हो रहे विश्व ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वीप्स 2025 में हिस्सा ले रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दिल्ली सरकार भी संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने किया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री मिश्रा ने कहा कि वीप्स कंटेंट क्रिएटर्स का महाकुंभ है।
वीप्स से प्रधानमंत्री जी का विजन है पूरी दुनिया के कंटेंट क्रिएटर्स गेमर्स एआई से जुड़े हुए लोग मूवी से प्रोडक्शन से ओटीटी से सब लोग यहाँ पर हैं। एक महाकुंभ है कंटेंट क्रिएटर्स का और हम लोग इसका एक सैटेलाइट सेंटर दिल्ली में भी डेवलप करने का विजन है हमारा संकल्प है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत लॉन्ग टर्म विजन को साकार करके दिखाया है।
वीप्स से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आइए बात करते हैं इस समय मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हमारे संवाददाता आदर्श से। आदर्श हमें ये बताएं कि दिल्ली को मुंबई की तर्ज पर एक बड़ा मनोरंजन का केंद्र बनाने की क्या तैयारियां चल रही हैं?
आकर्षिता श्री मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि दिल्ली में वेव्स का एक सैटेलाइट सेंटर विकसित करने का संकल्प दिल्ली सरकार ने लिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई के सामने प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहती है जिसमें कलाकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक अनोखा और अद्भुत मंच प्रदान हो। और आकर्षिता उन्होंने बताया कि शूटिंग के लिए तुरंत क्लियरेंस मिलने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम को तैयार किया गया है जिसे नेशनल पोर्टल से जोड़ दिया गया है। इसमें इसके द्वारा दिल्ली में शूटिंग करने के लिए इजाजत एक क्लिक पर मिल सकती है। वहीं इसके अलावा आकर्षिता उन्होंने बताया कि भले ही मुंबई पारंपरिक मनोरंजन में सर्वोच्च हो परंतु दिल्ली तकनीक के माध्यम से नए मनोरंजन में अव्वल होने की आशा रखती है।
जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे परिवार के लिए भावनात्मक स्तंभ की तरह कार्य करते हैं। राष्ट्रपति भवन में आज एजिंग विद डिग्निटी नामक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सलाह महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को स्वास्थ्य कवरेज भी दिया जा रहा है। पिछले रविवार को नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 5 वर्षीय एशियाई शेरनी महागौरी ने पहली बार 4 शावकों को जन्म दिया। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि दुर्भाग्य से 2 शावकों की खराब सेहत के कारण मौत हो गई। प्राणी उद्यान के अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल बाकी शावकों और महागौरी पर चिड़ियाघर के अधिकारी सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे नजर रख रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के निदेशक डॉ संजीत कुमार ने कहा कि महागौरी का यह पहला प्रसव है इसलिए शेरनी में स्वाभाविक रूप से मातृत्व की प्रवृत्ति बहुत कम है। भारतीय रेलवे ने नई डिजिटल घड़ी के डिजाइन के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता से तैयार मानक घड़ियों को देश भर के रेलवे स्टेशनों और सभी प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 3 वर्गों में प्रोफेशनल विश्वविद्यालय और स्कूली छात्र भाग ले सकते हैं। रेलवे के सूचना और प्रचार कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर चुने गए डिजाइन को 5 लाख रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली एनसीआर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया। कहा लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार जल्द ही जीएसटी में एक बार की माफी योजना लागू करेगी। दिल्ली सरकार ने आज राजधानी में दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर सेवा देवी सेवा के तहत 400 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 में दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा वेब्स को बताया कंटेंट क्रिएटर्स का महाकुंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।